भजन संहिता 110, भजन 110 पद 1। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। भजन का पहला पद ये संकेत देता है कि ये मसीह से संबंधित भजन है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस भजन की वाणी मसीह यीशु में पूरी होती है। इस भजन के पहले पद को इब्रानियों की पुस्तक के लेखक ने अपने उपदेश में यीशु के संदर्भ में प्रयोग किया है। मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, या यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने ओर बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी न बना दूं। यीशु अब पिता के दाहिने ओर महिमा में बैठा है। परमेश्वर पृथ्वी पर न्याय करने आएगा कि यीशु मसीह के सब शत्रुओं को नीचा दिखाए, ताकि सब चीजें उसके अधीन कर दें, और जब तक महाक्लेश समाप्त होगा सब देश पराजित हो चुके होंगे और यीशु मसीह के अधीन आ जाएंगे, वो राज करने आएगा। परंतु पिता कहता है, या मेरे प्रभु से यहोवा कहता है, मेरी दाहिने ओर बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी ना बना दूं। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक का लेखक कहता है, इब्रानियों 2:8, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, पर वो आएगा और हम यीशु को देखेंगे। भजन 110 पद 2-4, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं, तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान है, और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा कि तू मेलकिसदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। ये भविष्यवाणी का भजन अति सुंदर है। ये भजन हमें इब्राहिम के समय में ले जाता है, जब 5 राजाओं ने एक साथ आकर 4 शहरों को जीत लिया था और वहां के निवासियों को बंदी बना लिया था। उन्होंने सदोम को भी लूट लिया था। इब्राहिम ने यह समाचार सुना, उसका भतीजा लूत सदोम में था, इसलिए उसने अपने कुटुंब के सेवकों को हथियारों से लैस किया और राजाओं की सेना का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया, और इब्राहिम तथा उसके सेवकों ने उन्हें नष्ट कर दिया। लूत ने युद्ध बंदियों और जो संपत्ति उन्होंने लूटी थी उसे वापस ले लिया। जब इब्राहिम अपने सेवकों के साथ विजय प्राप्त कर वापस लौट रहा था, तब वे यरूशलेम के पास पहुंचे। वहां परमप्रधान ईश्वर का याजक रोटी और दाखमधु ले आया और इब्राहिम ने सब चीजों का दशमांश उसको दिया। याजक का नाम मेलकिसदेक था, जिसका दूसरा नाम शांति का राजकुमार भी था। इब्राहिम राष्ट्र का पिता, विश्वासियों का पिता, जो मेलकिसदेक को दशमांश देता था और मेलकिसदेक से आशीष पाता था, ये दिखाता है कि मेलकिसदेक इब्राहिम से बड़ा है, क्योंकि छोटे बड़ों से आशीष पाते हैं। शांति के राजा मेलकिसदेक से आशीष पाना और उसे दशमांश देना उसको आदर देना था। वो परम प्रधान का याजक था। इब्राहिम का पुत्र इसहाक था और इसहाक का पुत्र याकूब था। याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें एक का नाम लेवी था। परमेश्वर की ओर से उसका कुल इसराइल में याजक ठहराया गया। मूसा और हारून के परिवार महायाजक होने के लिए चुने गए। जब यीशु मसीह आया वो परमेश्वर में उच्च महायाजक होकर आया। महायाजक का काम दौरा होता था। लोग पवित्र और धर्मी परमेश्वर के पास नहीं आ सकते थे। ये आवश्यक था कि वे याजक के पास जाएं, जो उनका मध्यस्थ था, और याजक लोगों के लिए परमेश्वर के पास जाता था। लोगों के लिए परमेश्वर के पास जाकर वो बाहर आता था और परमेश्वर की ओर से कहता था। परमेश्वर ने हारून से कहा, गिनती 6 अध्याय 23 से 26 पद, तुम इसराइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस तरह उसने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व किया और मध्यस्थ बना। नए नियम में हमें एक नया मध्यस्थ मिला। वो लेवी का पुत्र तो नहीं था, परंतु वो उच्च महायाजक था जो परमेश्वर के सम्मुख हमारा प्रतिनिधित्व करता है और हमारे पास परमेश्वर को प्रकट करता है। परंतु यहूदी यीशु की उच्च महायाजक की उपाधि से तुरंत आपत्ति करते थे, क्योंकि वे कहते थे, यीशु कैसे उच्च महायाजक हो सकता है? वो तो यहूदा के गोत्र से आया। बाइबल यहूदा याजक के बारे में कुछ नहीं कहती, परंतु लेवी और लेवी याजकों के बारे में कहती है। इसलिए यीशु यहूदा के गोत्र से कैसे महायाजक बन सकता है? वचन की भविष्यवाणी में भी परमेश्वर ने भजनकार के मन में ये विचार डाला। जब वो भजन लिख रहा था तब परमेश्वर ने ये विचार उसके मन में डाला ताकि यीशु को महायाजक होने का आधार मिले। परमेश्वर ने शपथ खाई और वो ना पछताएगा। मैंने शपथ खाई है और मैं ना पछताऊंगा। या परमेश्वर ने शपथ खाई है कि तू सदा सदा के लिए याजक है। हारून के वंश से नहीं या लेवी के वंश से नहीं, परंतु मेलकीसेदेक की रीति पर। एक याजक की रीति जो लेवी की रीति के ऊपर है और महान है, जैसे लेवी के पिता अब्राहम ने दशमांश देकर मेलकीसेदेक को श्रद्धा अर्पित की। इस तरह ये याजक का पद और भी ऊंची श्रेणी है। मेलकीसेदेक को इब्राहिम ने दशमांश दिया और श्रद्धा अर्पित की थी, इसलिए मसीह मेलकीसेदेक की रीति पर सदा के लिए महायाजक है। यहां कुछ बाइबल शास्त्री है जो विश्वास करते हैं कि मेलकीसेदेक और कोई नहीं परंतु यीशु मसीह ही था, जिसको पुराने नियम में परमेश्वर के प्रकट होने से पहचाना जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु इब्राहिम के बारे में फरीसियों से वाद विवाद करता है और यीशु परमेश्वर को अपना पिता कहता है। वे कहते हैं, हमारा पिता इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना 8 अध्याय 56 से 58 पर, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। परंतु विद्वान विश्वास करते हैं कि यीशु का ये कथन मेलकीसेदेक के संदर्भ में है जब इब्राहिम ने उसे दशमांश दिया। ये एक रुचिकर पद है जिसे परमेश्वर ने यहां डाला है। हम उत्पत्ति की पुस्तक में वापस चलते हैं, परंतु इब्रानियों की पुस्तक भी देखेंगे जहां यहूदियों से विवाद किया गया कि मसीह कैसे हमारा महायाजक हो सकता है। वो लेवियों की रीति पर नहीं परंतु मेलकीसेदक की रीति पर था और परमेश्वर ने ये घोषित किया था, प्रभु ने शपथ खाई और ना पछताएगा कि तू मेलकीसेदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। भजन 110 पद 5 और 6। प्रभु तेरी दैनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा, वो जाति जाति में न्याय चुकाएगा, रणभूमि लोतों से भर जाएंगी, वो लंबे चौड़े देश में प्रधान को चूर चूर कर देगा। जरूर ये परमेश्वर के महान न्याय के बारे में बात कर रहा है जो आने वाला है, अर्थात महाक्लेश के बारे में। वो मसीह विरोधी का न्याय करेगा, परमेश्वर के कोप का दिन महाक्लेश, वो मसीह विरोधी का न्याय करेगा और संपूर्ण रणभूमि लोतों से भर जाएगी। पूरी मिगदोन की घाटी में लहू घोड़े की लगाम तक बहेगा। भजन 110 पद 6 और 7। वो जाति जाति में न्याय चुकाएगा, रणभूमि लोतों से भर जाएगी, वो लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा, वो मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वो सर को ऊंचा करेगा।